مجبور ہو جاتے ہیں, پر مجبور نہیں ہونا چاہیے, مضبوط رہنا چاہیے.
تو یہ ہے کہ ہر طرح کا رول اویلیبل ہے. اب میرے اوپر, ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہیرو بنے, ہیروئن بنے یا پھر راون بنے, یہ ہماری مرضی
اوپر ہے.
بالکل دیدی,
من تو ہمیشہ ہی چنچل ہی رہتے ہیں, اور کلاکار کا من میں چنچلتا جب آ جاتا ہے, اسے کلاکار کچھ آتا نہیں ہے, مطلب کچھ آگے نہیں بڑھتے ہیں,
تو
ہاں ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں جب چنچلتا ہو جاتا ہے. تو کنسنٹریشن بہت ضرورت ہوتا ہے, تو کنسنٹریشن کے بارے میں آپ تھوڑا کچھ ہم لوگ کو بتائیں.
من کے اوپر بدھی ہوتی ہے اور من کو گھوڑا کہا جاتا ہے. اب گھوڑے پر بدھی سوار ہے اور اپنی لگام کو چھوڑ دے گا تو گھوڑا مالک کو کیا کرے گا, پچھاڑ دے گا نا. تو آپ کو بدھی سے کام لے کر من کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑے گا, من کی ایکاگرتا لانی پڑے گی. من اور بدھی دو چیز آپ کو بھگوان میں لگانا پڑے گا, تب آپ کے پاس کنسنٹریشن آئے گا. اور من کی ایکاگرتا کے لیے اور بدھی کو کنسنٹریشن کرنے کے لیے آپ کو من کا گیان ہونا چاہیے. من ہے کیا چیز؟ من کوئی وناشی چیز نہیں ہے. جس پرکار آپ شریر کی ڈیفینیشن کسی کو بتائیں گے, ہڈی کے ٹکڑے کو شریر نہیں کہہ سکتے ہیں, نہ ماس کے ٹکڑے کو, جس میں آنکھ کان ناک ہاتھ پیر سب کو ملاتے ہیں تب کہلاتا ہے شریر. تو ٹھیک اسی پرکار شریر میں جو کام کرنے والی شکتی ہے اس کو موٹے روپ سے کہتے ہیں آتما. اور آتما کے تین آرگنس ہیں, من, بدھی اور سنسکار. تینوں چیز کے ساموہک روپ کو کہتے ہیں سول. اور وہ اوناشی ہے, اس کا کبھی وناش نہیں ہوتا ہے. تو من بھی اوناشی ہوا نا, ایسے تو نہیں ہے شریر سے جب آتما نکل جاتی ہے تو آپ کہیں کہ من تو اس میں ہے لیکن آتما نکل گئی. یہ بھی نہیں کہتے کہ بدھی ہے من ہے سنسکار نکل گئے. تینوں کا جانا یہ سدھ کرتا ہے کہ یہ باڈی ڈیڈ ہو گئی, اور واہن کو چلانے والا چالک نکل گیا. تو تینوں کا سدھ کرتا ہے چلے جانا کہ یہ شریر ارتھی ہو گیا. تو تینوں کا کنیکشن کنسنٹریشن میں ہے. موٹے روپ سے اس کو آتما کہتے ہیں, من, بدھی اور سنسکار. تو آپ کو اپنے من کے اوپر بدھی کو رکھو, اور بدھی کا کنسنٹریشن پاورفل کرنے کے لیے پرماتما سے جوڑو. تو پرماتما کو کیا کہتے ہیں؟ سرو شکتی وان. جیسے مین پاور ہاؤس ہوتا ہے, آپ کا آج دنیا کے ہزاروں لوگوں سے کنیکشن ہے اور ہزاروں جگہ پہ فٹنگ ہے, لیکن مین پاور ہاؤس سے فٹنگ نہیں ہے تو روشنی آئی. تو آتما کا کنیکشن, بدھی کا کنیکشن جب پرماتما کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ایٹومیٹک اس میں لائٹ اور مائٹ آتی رہتی ہے. اس لائٹ اور مائٹ سے, کنسنٹریشن سے, راجیوگ ودیا سے آپ کا من اپنے آپ کنٹرول میں آ جائے گا, وہ چنچلتا نہیں کرے گا. آپ کو معلوم ہوگا گیتا میں جب ارجن نے شری کرشن کو پوچھا, ہے بھگوان یہ من تو بہت چنچل ہے, اس کو کیسے میں بس میں کر سکتا ہوں, یہ تو ہوا سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. تب شری کرشن نے کیا کہا؟ نہیں, کرت کرت ابھیاس جڑ مت ہو سجان. اگر آپ نے راجیوگ کا ابھیاس کیا تو من آپ کے پاس کنٹرول ہو جائے گا, آپ کے آرڈر میں چلے گا وداؤٹ آرڈر. وہ تو آپ کے کرمچاری ہے نا آتما کا, اور کرمچاری اور منتری راجا کے آرڈر میں نہیں ہے تو راجا کس بات کا؟ تو آپ بھی ایک اس شریر کے مالک ہیں, راجا ہے. اور ہماری کبھی آنکھیں چنچل ہوتی ہیں, کبھی من چنچل ہوتا ہے, کبھی کچھ چنچل ہوتا ہے, تو ہم مالک کس بات کے ہیں؟ اگر مالک ہیں تو سب کو کنٹرول کرنا پڑے گا, وہ سب آپ کی پرجا ہے. کرم اندریا, گیان اندریا جتنے بھی ہیں اس شریر کے, سب منتری منڈل اور پرجا ہے, اور آپ اس کے اوپر راجا ہو آتما.
بہت کلاکار کا جیون میں اچھا پورا نہیں ہوتا ہے, تو کیا وہ اگلا جنم میں پھر سے وہی اچھا لے کے پھر وہ کلاکار بن سکتا ہے؟
اس کو اچھا نہیں رکھنی چاہیے, پریاس کرنا چاہیے, پرشارتھ کرنا چاہیے کہ میں اتنے سمے کے اندر اتنا کام کروں گا. اچھا شکتی ایک الگ ہے. اگر آپ نے اچھا رکھی تو آپ کی اچھا اور آوشیکتا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. लेकिन आप एक लक्ष्य रख लीजिए सामने कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन आज एक लक्ष्य रखा, कल एक रखा, परसों एक रखा, तो एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक लक्ष्य लेकर के आप चलिए, मुझे अपने जीवन के अंदर इस लक्ष्य तक पहुंचना है, बजाय इच्छाओं के वशीभूत होना। इच्छाओं के वशीभूत होंगे और दूसरा जन्म लेंगे फिर भी इच्छाएं करते रहेंगे तो शांति तो नहीं मिलेगी, कोई अशांति का वातावरण रहेगा।
हम जो सुना है जमदंड है, वो जमदंड कहां से मिलता है? अक्सर आदमी मरने के बाद नम जीवित का अंदर।
मैं आपको बता दूं, जो जमदंड है यहां पर ही मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है, गर्भ में और मरने के वक्त भी मिलता है और यहां पर भी मिलता है। जैसा आप कर्म करेंगे कर्म का फल ज्यादातर यहां मिल जाता है। अगर जो आपका बच जाता है, और तीन प्रकार से आप भोग को भोग सकती हो, एक है धर्मराज की सजा के द्वारा, एक है बीमारी के द्वारा, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, और तीसरा आप काट सकते हैं योग के द्वारा। अगर योग के द्वारा आपने काट लिया तो वो कम हो जाएगा, लेकिन आपको तीन प्रकार से अपनी सजाओं को काटना पड़ेगा। और जो मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से जुड़कर नहीं काट सकता है तो उसको भोगना ही पड़ता है। कहा जाता है कि जो सत्य है सदैव कसौटी पर कसा जाता है, लेकिन झूठ राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन झूठ मरते टाइम चिल्लाता है और सजाएं भोगता है, लेकिन सत्य अपने जीवन में कसौटी पास करके मरते टाइम हंसता है। इसलिए ये भी कहा है कबीर दास ने कि आप ऐसी करनी करो जिससे जाते टाइम हम हंसे, दुनिया हमारे लिए रोए कि इतना अच्छा व्यक्ति दुनिया से चला गया। ऐसा कर्म नहीं करना जो हम जाते टाइम खूब रोए और दुनिया हंसे कि ये चला गया तो अच्छा है। तो आपको जो दंड है वो अपने दिनचर्या के अंदर भी प्राप्त हो सकता है, शारीरिक भोगना से, मानसिक कष्ट से, बेचैनी से, नहीं तो फिर मरते वक्त भोगना पड़ेगा। और जो बच जाता है, बच्चा जब गर्भ में रहता है 6 महीने, तब उसको गर्भ जेल भोगनी पड़ती है। और जो बाकी बच जाता है फिर जन्म लेने के बाद फिर भी भोगता है। ये तो कर्म फल की दुनिया है, कुरुक्षेत्र है, ये कर्मों की खेती है, यहाँ बीज बोया जा रहा है, जैसा करेंगे वैसा फल पाए।
अभी पूछने वाली है मीरा दास। जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, वही करवाता है, हम लोग का क्या रोल आता है?
जो होना है वही हो रहा है। मरने के बाद भी मनुष्य क्या कहता है, ऐसा होना था हो गया, लेकिन आपको मालूम नहीं है क्या होगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ में, अपने पार्ट में हमेशा अच्छा करने का संकल्प रखना चाहिए।
जो होता है वो वही करवाता है, फिर हम कोशिश क्यों करें कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो तो करने वाला वही है हम लोग।
परंतु ये गलत है, परमात्मा को ये नहीं कहा जाता है कि दुख देने वाला सुख करने वाला, वो दुख करता है और सुख करता है। ये मनुष्य तो अपना पाप कर्म करने के लिए भगवान को दोषी ठहरा देता है, पर भगवान कभी नहीं कुछ करता है, आपका बुरा नहीं करेगा, आपको अच्छा सिखाएगा, अच्छा देगा। बुरा तो हम अपने कर्म के आधार से भोगते और पाती है, और अच्छा जितना है वो भी हम अपने अच्छे कर्म के आधार से प्राप्त करते हैं। लेकिन हम अपने को बचाने के लिए ईश्वर को दोष देते हैं, पर वास्तव में ईश्वर का ये काम नहीं है कि जो कुछ उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है कोई, वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। ये भी आपको, यह हमारा 7 डेज का क्लास है, आपको समझना पड़ेगा। वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है लेकिन सर्वव्यापक नहीं है, इसलिए तो चोर चोरी करता है, डाका डालता है, कहता है सब भगवान करा रहा है, तो उससे पाप कर्म और बढ़ते जाते हैं।
आप जैसे बोले वो सर्वशक्तिमान, वो तो कर सकते हैं, कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, अच्छा ही सबको अच्छा बना देते हैं।
है सर्वशक्तिमान, लेकिन वो दाता है, देने वाला है, वो सबसे सुपर पावर है। नहीं तो आज सारे संसार के लोग उसको क्यों याद करते हैं? याद उसी को किया जाता है जिसने अच्छा किया है,
वही बात,
बुरे को तो नहीं याद करते हैं। आज कुछ भी हो, कितना भी हो, जब कष्ट पड़ता है तो उसको बुलाते हैं, तो वो जरूर कष्टहारी है ना। तो कष्टहारी के नाम पर हम अपने बुरा कर्म करने के लिए उसके ऊपर दोष धर देते हैं, वही कराता है, करो जितना चाहिए करो, अपने लिए दरवाजा खोल लेते हैं खराब का, और पाप कर्म की दुनिया बढ़ती चली जाती है। नरक है अभी, घोर कलयुग है, इसलिए उनकी भ्रांतियां, उनके मनोविचार सब नेगेटिव, परमात्मा के लिए भी नेगेटिव हो गए, तो अपना भी नेगेटिव करते जाते, वही करा रहा है, मैंने थोड़ी कुछ किया है। अरे आप तो करने वाले हो, वो करावन आ रहे, वो तो अच्छा कराएगा, अपना कर्म तो आप कर रहे हैं ना, नहीं तो आपको फिर हाथ पैर वगैरह क्यों मिला है, बुद्धि क्यों मिली, फिर तो जान पर ही हो जाए ना। इसलिए ये समझना रॉन्ग है कि सब कुछ परमात्मा कराता है, वो नहीं कराता है।
जो मैं नहीं चाहकर भी वो काम हो जाता है, इसका कारण क्या है और ये कैसा कंट्रोल हो सकता है?
ये आपकी कंट्रोलिंग पावर नहीं है।
तो कैसा ये कंट्रोल?
वो तो कंसंट्रेशन से आएगी, राजयोग की विद्या से आएगी।
कोशिश करके भी उसका फल
नहीं, वो ठीक रीति से नहीं कर रहे हो। कंसंट्रेशन की एक विधि है, कौन कंसंट्रेशन करने वाला है, किससे करने वाला है, उसका रूप क्या है, परिचय क्या है, कहाँ रहता है, और आपका असली रूप क्या है, परिचय क्या है।
ये काम करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी हो जाती है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं चाहेंगे तो हो जाएगा।
नहीं होता है, क्योंकि ऐसा एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो उसको करना ही पड़ता है।
सिचुएशन तो बाहर की है ना, लेकिन आपकी इनर शक्ति तो है उस सिचुएशन को पास करने के लिए, अंदर की शक्ति तो ज्यादा होती है, वो मेडिटेशन से ही जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन से आपका बुद्धि का कंसंट्रेशन माइंड आएगा, तो बुद्धि बल होना चाहिए। आप सब चाहते हैं मैं क्रोध नहीं करूं, फिर भी क्रोध कर जाते हैं, क्योंकि जब क्रोध आता है उस समय आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्रोध एक रोग है, क्रोध एक भोग है, पागलपना है, तो आप क्रोध नहीं करेंगे, अटेंशन में रहेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, टेंशन में नहीं आएंगे, पर नहीं चाहते हुए भी आ जाता है, क्योंकि शक्ति नहीं है।
तो उस वक्त तो क्रोध जो है, जो नहीं करने का चीज वो हो जाती है।
नहीं नहीं, उसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मेंटल पावर की जरूरत है, और मेंटल पावर आता है भगवान के साथ कंसंट्रेशन करने से, उसको कहते हैं ये सर्वशक्तिमान। तो उससे जब आपको शक्ति मिलेगी तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, और अगर शक्ति कम होगी तो वो कंट्रोल नहीं होगा, आप जैसा चाहते वैसा नहीं कर पाएंगे, वो आपको अपने बस कर लेगा, परिस्थिति आपको बस कर लेगी।
इसका जवाब तो यही है कि अपने आप में उतना ताकत लाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमको अपने थॉट प्रोसेस से हटा ही नहीं सकता है।
नहीं,
हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबल है।
स्थिति से हम परिस्थिति पर कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारी स्व स्थिति में हर चीज में विवेक दृढ़ता ठीक होनी चाहिए।
बिल्कुल, अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री चरण महांती को अपना प्रश्न पूछने के लिए।
एक साधारण लोग है या कलाकार है, उसके लिए साधना जरूरी, साधना के लिए कंसंट्रेशन या मेडिटेशन जरूरी? जो मेडिटेशन को जारी रखने के लिए तीनों तरीका है, क्या तरीका है
जारी रखने के लिए? तो मेडिटेशन करते रहना है, उसका अभ्यास करना है, यही तरीका है, उसको छोड़ना नहीं है। आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को समझ लीजिए, एक अपने आप को समझ लेना और परमात्मा को समझ लेना, उसको कहते हैं नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। तीन चीज को जब आप समझ लेंगे तो राजयोग अथवा कंसंट्रेशन साधना चलते फिरते उठते बैठते भी होती रहेगी, वो छूटेगी नहीं। पर तीन चीज का रियलाइजेशन लाने के लिए आपको आध्यात्मिक कॉलेज में पढ़ने आना पड़ेगा, वो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी, ये तीन चीज का रियलाइजेशन देता है और रियलाइजेशन के बाद कंसंट्रेशन अपने आप चलता रहेगा। इतना सहज है कि उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आप गॉड से कनेक्शन जुड़े रहेंगे, पावर आती रहेगी।
जल्दी में कैसे हो सकता है ये चीज?
जल्दी माने
जल्दी में कैसे?
जल्दी ज्ञान ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना। इसका नाम ही है इजी राजयोग। अरे जल्दी ले लीजिए ना आप, कल सवेरे से शुरू कर दीजिए जब जल्दी है तो।
बिल्कुल,
सुबह से एक घंटा आइए, ओनली 5 दिन आइए और 5 दिन में आपका काम हो जाएगा बस।
ठीक है,
लेकिन एक घंटे ले लिया आइए।
ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेंगे मोहित चक्रवर्ती जी का।
इस विषय में हमारे चारों ओर हम जो देखते हैं कि बाढ़ होता है, सूखा होता है, बम ब्लास्ट होता है, लोग में गरीबी है, दिन दहाड़े में औरत का बलात्कार होता है, बच्चे कन्या भ्रूण का हत्या होता है, बेरोजगारी है, लोग में कितना दुख है, ये सब क्या ईश्वर की मर्जी में होता है?
ये कुछ भी बुरी चीज ईश्वर की मर्जी में नहीं है, लेकिन जब आपको पहले ही बता दिया कि जो विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा कि ये सृष्टि एक मंच है, नाटक है, ये नाटक फिक्स है और नाटक के अंदर 4 पार्ट हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। तो जब सत्ययुग यहां पर था दुनिया के अंदर तो देवी देवताओं की श्रेष्ठ दुनिया थी। आपने इतिहास पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है, एक समय यहां पर राम राज्य था, गांधी जी उसकी कल्पना करते थे कि राम राज्य हो जाए, पर आज तक राम राज्य नहीं हुआ क्योंकि रावण मरता ही नहीं है, हर साल जलाते हैं, तो अभी जो अंदर में रावण बैठा है वो मरता नहीं है। तो जब राम राज्य था तो दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा, ना दैविक रीति से, प्राकृतिक रीति से, ना दैहिक रीति से, कोई रीति से दुख नहीं था, सत्व प्रधान वर्ल्ड था। फिर धीरे धीरे थोड़ा नीचे आया, त्रेता युग बना, उसमें भी हम बहुत सुखी शांति आनंद में थे, और फिर द्वापर में आई तो हमारी रजो प्रधान स्टेज हो गई, फिर कलयुग में आ गए तो तमो प्रधान हो गई। तो आप देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा सोचेगा तो परमात्मा हमारा माता पिता है, वो कहता है मैंने आपको बहुत सुंदर एक सृष्टि में खेल खेलने के लिए दिया। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बगीचा खेल खेलने को देती है और वो खेलते खेलते गंदा काम करने लगते हैं, बुरा काम करने लगते हैं, तो माँ बाप का क्या कसूर है? जब माँ बाप को पता पड़ेगा कि ये तो घोर अंधेरी रात हो गई और गंदा खेल खेलने लगे, कान पकड़ेगा और घर वापस लेगा, चलो 2 चांटा मारेगा। तो परमात्मा भी हमारा माता पिता है, उसने हमें यह बहुत सुंदर सृष्टि रूपी नाटक में खेल खेलने के लिए भेजा था, लेकिन खेलते खेलते हम देह भान में आ गए, स्त्री पुरुष के भान में आ गए और पाप और पुण्य के भान में आ गए, और हम देखते देखते एकदम भ्रष्टाचारी पापाचारी दुनिया हो गई। परमात्मा फिर भी देखता है कि मेरे बच्चे एकदम भस्मीभूत हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जल गए हैं, तो वो खुद इस सृष्टि पर आता है और कहता है मैंने तुम्हें इतना सुंदर दुनिया दी थी जिसकी बापूजी भी कल्पना करते थे, और आज आप खेलते खेलते कहां पर पहुंच गए, आप फिर वापस चलो, मैं कालों का काल महाकाल आया हूं और फिर से तुम्हें नई सत्ययुग दुनिया में ले जाऊंगा। तो परमात्मा का काम है, आप जब बुरे बन जाते हैं तमो प्रधान तो आपको अच्छा बनाता है, और जब आप अच्छा खेल खेलती है तो अपने आप खेलते खेलते बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, और बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से सारे विकार शुरू हो जाते हैं। ये सृष्टि का नाटक आदि अनादि अविनाशी है जो चलता रहेगा। अभी सृष्टि का एंड है या आसुरी संप्रदाय टू मच है, पाप टू मच है, जैसे कि आपने बताया, तो उसका अति का अंत तो होगा ना। जब घोर अंधेरी रात होती है तो सवेरा आता है ना, तो चार से छह बजे के समय को क्या कहते हैं? ना रात कहते ना दिन कहते, क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। तो वर्तमान समय वो चल रहा है कि घोर नरक का समय चल रहा है। वहां प्राकृतिक आपदा होंगी, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होंगे, स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी, सब कुछ। और इसके डिस्ट्रक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन बम्स। इतनी तैयारियां हैं कि अगर एक गुनी सामग्री डाली जाए, फेंकी जाए, सारा विश्व खत्म हो जाएगा, डेढ़ गुनी सामग्री बच जाएगी। तो परमात्मा का नाम है जीओडी गॉड, जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन। तो एक तरफ उसका जनरेशन का काम हो रहा है, एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि आप आओ अपनी लाइफ को बदलो। कोई देवताओं के पंख नहीं थे जो ऊपर से आते थे ऐसे करके, और राक्षसों के कोई सींग नहीं थे। कर्म के आधार से मनुष्य राक्षस बनता है और कर्म के आधार से देवता बनता है। अभी आपको देवता बनने की पढ़ाई इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का भी एम ऑब्जेक्ट है। नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना, ये यहाँ का लक्ष्य है, जैसे आप लोगों के कॉलेज का लक्ष्य होता है। तो इतना ऊंचा लक्ष्य रख के परमात्मा भी पढ़ा रहा है, आपको कह रहा है आप सब देवता थे। इस सृष्टि पर जब सत्युग था तब आपने देवता का पाठ बजाया, अभी आप सब राक्षसी पाठ बजाने लगे, और दुनिया में हजारों लाखों राक्षसी हो गए। अभी तो कोई नहीं मरता है, ऐसा टाइम आने वाला है जो लाखों करोड़ों एक साथ जाएंगे।
तो ये है कि हर तरह का रोल अवेलेबल है। हाँ। अब मेरे ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हीरो बने, हीरोइन बने या फिर रावण बने, ये हमारी मर्जी
ऊपर है।
बिल्कुल दीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात करने का तो बहुत मन है लेकिन समय भी कम है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाले और यहाँ पर आके पहुँचे और हमारे ये मंच को चूज किया कि अपना अपना प्रश्न पूछने के लिए, शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, आशा करते हैं इस कार्यक्रम से आपने जरूर कुछ सीख लिए होंगे। तो आज का कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।